तारीख 23 मई दिन शनिवार, मैं विनीत खरे आज इंडिया बोल। नरेंद्र मोदी सरकार का एक साल, क्या हासिल कर पाई एनडीए सरकार, क्या अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी, अच्छे दिन किसके आए, विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने में क्या अड़चने रही, महंगाई भ्रष्टाचार कालाबाजारी से राहत क्या मिल पाई, गुजरे 365 दिनों का क्या है आपका आकलन, आज इंडिया बोल में इसी मुद्दे पर है चर्चा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त टेलीफोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार फैसल मोहम्मद अली से। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक बेनतीजा रही, क्योंकि उसमें इस बात पर असहमति पैदा हो गई कि इसे मध्य पूर्व में कैसे लागू किया जाएगा। इस प्रस्ताव को मिस्र और दूसरे अरब देशों की मंजूरी थी, लेकिन इसको लागू करने का मतलब होता इसराइल पर इस बात का दबाव पड़ना कि वो अपने परमाणु हथियारों के बारे में दुनिया को साफ साफ बताए। ऐसा समझा जाता है कि उसके पास परमाणु हथियारों का जखीरा है। प्रस्ताव को लेकर अमरीका, ब्रिटेन और कनाडा असहमत थे। मिस्र के उप विदेश मंत्री हाशिम बद्र ने कहा, मिस्र इस बात को लेकर बहुत निराश है कि महीनों की मेहनत और तैयारियों का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के हमारे प्रयास को तीन प्रतिनिधिमंडलों ने ब्लॉक कर दिया है। हम इस मामले में मध्य पूर्व की पूरी छवि को लेकर भी चिंतित हैं। मिस्र के उप विदेश मंत्री के शब्द। इंडोनेशिया ने अपने उत्तर पूर्वी तट पर उन बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों की खोज के लिए बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी नौकाएं समुद्र में यूं ही बह रही हैं। पहले इंडोनेशिया की फौज ने इन नौकाओं को अपनी सीमा में घुसने से रोक दिया था, लेकिन इंडोनेशिया अब अप्रवासियों को शरण देने के लिए राजी हो गया है। पिछले दो हफ्तों में बांग्लादेश और म्यांमार से कम 3600 से अधिक लोग क्षेत्र में पहुंचे हैं। सीरिया में अधिकारियों का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाके पलमायरा के विश्व प्रसिद्ध म्यूजियम में घुस गए हैं। हालांकि सीरियाई सरकार के प्राचीन कालीन वस्तुओं के विभाग के प्रमुख का कहना है कि वहां से धरोहरों को पहले से ही हटा दिया गया था। आईएस ने कब्जा किए हुए इलाकों में पहले भी इस तरह की इमारतों को और धरोहरों को बर्बाद किया है और इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि वो यहां भी ऐसा ही करेगा। आयरलैंड में हुए जनमत संग्रह के शुरुआती रुझानों से लग रहा है कि नागरिकों ने समलैंगिक शादी को कानूनी दर्जा दिए जाने के पक्ष में वोट डाला है। मुल्क के तकरीबन 32 लाख लोगों से पूछा गया था कि क्या वो मर्द की मर्द से और औरतों की औरतों से शादी के लिए देश के संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। अगर समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने के पक्ष में फैसला आता है तो आयरलैंड बहुमत के आधार पर समलैंगिक शादी को वैधता देने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। पेरू चीन की उस योजना पर गौर करने के लिए तैयार हो गया है जिसमें अमेजन के जंगलों से गुजरती हुई एक रेलमार्ग बनाने की योजना है। पेरू ने योजना को हरी झंडी चीनी प्रधानमंत्री ली किशियांग की यात्रा के बीच दी। चीन ने इसके लिए ब्राजील को भी राजी कर लिया है। 5000 लंबी ये रेल लाइन यात्रा और माल ढोने की कीमत और वक्त को बहुत कम कर देगी, लेकिन पर्यावरण पर होने वाले इसके असर को लेकर चिंता जताई जा रही है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
नरेंद्र मोदी सरकार का एक साल पूरा, क्या हासिल कर पाई एनडीए की सरकार, गुजरे 365 दिनों का क्या है आपका आकलन, यही है आज के इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 1811-7000 और 1811-7001 दो टोल फ्री नंबर हैं, इस पर आप फोन कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश शामिल हैं। उर्मिलेश जी, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ जो कमेंट्स आए हैं, फेसबुक पेज है बीबीसी हिंदी का, उसको मैं पढ़ देता हूं। अशोक कुमार लिखते हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। चंदन कुशवाहा, कामकाज में तेजी आई है। मनीष सिंह, मोदी सरकार नक्सलों से निपटने के लिए क्या कर रही है और क्या किया पिछले एक साल में। कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया, ये कहना है पी राम मेहता का। शंकर गौतम लिखते हैं कि मोदी जी भारत को बर्बाद कर रहे हैं। इमरान अंसारी लिखते हैं रुपया गिरकर जमीन पर लौट रहा है, पेट्रोल चूम रहा है आसमान, विकास का डैडी चश्मा लगाकर घूम रहा है चीन और जापान। मनारम जाट ये लिखते हैं मोदी जी अपना नाम कमाने में लगे हैं और धार्मिकता बढ़ाने में लगे हैं। बहादुर खान लिखते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार में कुछ काम नहीं हुआ है, मोदी सरकार की कुछ योजनाएं प्रगति पर हैं, कुछ तो महंगाई भी कम हुई है, 17% काम हुआ है। पता नहीं 17% की फिगर कहां से लेकर आए हैं। आदि देव लिखते हैं मुझे अभी 15 लाख नहीं मिला है, क्या आपको मिल गए हैं। और असित सिंह ये लिखते हैं कि मनरेगा कर्मियों का शोषण हो रहा है, सोशल ऑडिट भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, कुछ तो करिए, मन की बात का आपका जवाब क्यों नहीं देते। और कुछ देर पहले अकबर अली रहमानी ने इन्होंने लिखा है भारत को बर्बाद कर दिया गया है। और शाहिद आलम उन्होंने करीब 12 मिनट पहले अपना एक कमेंट छोड़ा है फेसबुक पर कि मोदी जी एक साल में आम जनता और किसान बेहाल है, उद्योगपति और पूंजीपति मालामाल। उर्मिलेशी कि आपकी जिंदगी कैसे बदली पिछले एक साल में।
देखिए जो आपके कमेंट्स अभी मैं सुन रहा था तो मैं स्वयं भी अपने अपने अनुभवों को या अपने एहसास को आर्टिकुलेट करने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने एक वर्षों के दौरान जो चुनाव के दौरान जो बड़े वायदे जो किए थे, अगर उनको उन बड़े वायदों को हम देखें तो उसमें बहुत बड़े अचीवमेंट्स नहीं है इस सरकार की। जैसे महंगाई का मुद्दा, मैं समझता हूं कि करप्शन और महंगाई दो बड़े मुद्दे इस सरकार के थे जिसकी वजह से उसको जीत मिली। और करप्शन से ज्यादा मैं समझता हूं कि महंगाई, करप्शन मिडिल क्लास के लिए इम्पोर्टेंट था, करप्शन ओपिनियन मेकर्स जो होते हैं वो बड़ा इसको महत्व दे रहे थे, लेकिन आम जनता जो वोट देती है, जो किसी को जिताती किसी को हराती है, दरअसल उसके लिए महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था। अब महंगाई के बारे में सरकार कह रही है कि हमने कम किया है, लेकिन जब बाजार में आप जाते हैं सामान खरीदने, जो लोअर मिडिल क्लास जाता है, मिडिल क्लास जाता है, गरीब आदमी जाता
है, कहता है कि
तो उसको लगता है ये तो कमाल है, अरहर की दाल 125 रुपए बिक रही है।
और
तो,
विपक्ष कहना रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल के दाम कम हुए उसका काम,
लेकिन तेल के दाम भी जब कम हुए अपने देश में, जब पूरी दुनिया में कम हो रहे थे, जब बाजार गिर गया था, तो उस वक्त भी जो तेल की कीमत में कमी लाई गई वो 61 रुपए पर लीटर हमको पेट्रोल मिल रहा था, लेकिन मिलना उसको चाहिए था 40-44 के आसपास। तो जो 20 रुपए का फर्क पर लीटर था उस वक्त भी लोग सवाल उठा रहे थे कि किसकी पॉकेट में जा रहा है। जिस तरह दाम गिरे उसके मुकाबले जो प्राइस फिक्सेशन था पेट्रोल का बाजार में, खासकर भारतीय खुदरा
तो
बाजार में, वो नहीं था।
तीन अगर मोटे, अगर हम आजकल जैसे हम देखते हैं लेख लिखा जाता है, तीन पॉइंट अच्छे और 3 पॉइंट खराब, इसको मैं पूछूं इस हिसाब से तो क्या
मैं समझता हूं कि सबसे जो 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 पहले खराब से अगर शुरुआत हम करें, क्योंकि हम अभी तक महंगाई और भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो देखिए भ्रष्टाचार में अगर काला धन एक बड़ा इशू है, उस पर सरकार विफल रही, कोई कुछ भी ऐसा नया नहीं कर सकी सिवाय कानून अभी पास करने के,
15 लाख रुपए नहीं आए
जी जो आम आदमी मांगता है। और दूसरा जो महंगाई का प्रश्न है उस पर निर्णायक कदम नहीं उठा पाई सरकार, ऐसा मैं मानता हूं। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर इस देश के लोकतंत्र और इस देश के संविधान के लिए, कि कहीं न कहीं लोगों ने महसूस किया, जो समझदारी जिनके अंदर है, जो देश को और समाज को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, कि आइडिया ऑफ इंडिया पर अटैक हुआ। और ये जो आइडिया ऑफ इंडिया यानी भारत का विचार, यानी भारत जिस तरह का है, जिस तरह हमने भारत को अचीव किया अपनी आजादी की लड़ाई
उस
में,
पर अटैक हुआ। एक मेरे ख्याल से और मैं करना चाहूंगा जिस पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ, वो किसानों की हालत, उस पर भी काफी हमले हुए हैं नरेंद्र मोदी सरकार पे। मैं आपके पास उर्मिलेश आऊंगा, कुछ कॉलर हमारे लाइन पर हैं। सऊदी अरब से मोहम्मद अथर रिजवी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब अपनी बात रखिए। हेलो
सहमत हूँ
जी। एक साल में कैसे गुजरे हैं आपके रिजवी साहब? आप तो खैर बाहर हैं हिंदुस्तान से, लेकिन आते जाते रहते होंगे। एक साल में आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, या आपके परिवार की जिंदगी कैसे बदली है?
सर ना तो हमारी जिंदगी में कोई बदलाव आया, ना हमारी जिंदगी में कोई बदलाव आया, ना तो मूलभूत सुविधाएं जो एक नागरिक को मिलनी चाहिए उसमें कोई बढ़ोतरी हुई, बल्कि इस सरकार ने तो हम आम नागरिकों का एक भद्दा मजाक किया, झूठे वादे करके जनता को गुमराह करके इसने वोट दिया। वादे पूरे करने की बात तो बहुत दूर की है, जिन बातों पर ये कांग्रेस का सरकार से विरोध किया करते थे वो बातें सरकार में आने के बाद ये खुद कर रहे हैं। जैसे कि रुपए की जितनी हालत में विरोध किया करते थे, बत्ती कीमत पे ये विरोध किया करते थे, पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए विरोध किया करते थे, बांग्लादेश से इन्होंने जो समझौता किया उससे भी विरोध किया करते थे, जो अमेरिका से इन्होंने न्यूक्लियर डील को आगे बढ़ाया उसमें भी कांग्रेस सरकार से विरोध किया करते थे। तो जिस चीजों के लिए विरोध किया करते थे, रेल किराया बढ़ाने पर विरोध किया करते थे, वो सारी चीजें खुद ही कर रहे हैं।
तो आप कह रहे हैं कि एक तरह से यू टर्न सरकार है, आप सऊदी अरब में हैं।
बिल्कुल
रिजवी साहब, आप बताइए भारत की छवि क्या पिछले एक साल में अच्छी हुई है, वैसी की वैसी है? आप वहां पे जो जिन लोगों से आप मिलते होंगे वो क्या कहते हैं भारत के बारे में, पिछले एक साल में क्या हुआ है?
देखिए भारत की छवि तो उन लोगों के लिए बहुत पहले से ही अच्छी है। भारत का चेहरों मुस्कुराहट आती है, हम बताते हैं हम हिंदी हैं, भारत की छवि इनके आने से तो कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। और ना ही आपकी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं सर, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए जो एम्बेसी है या जो कॉन्सुलेट है वहाँ पे अच्छी सुविधा उनको मिले। अगर उनकी कोई परेशानी हो तो एम्बेसी उस पर एक्शन ले या कॉन्सुलेट उस पर एक्शन ले। लेकिन यहाँ पे
जी
इंडियन एम्बेसी और इनका
वो हाल वैसे का वैसा है जी। और बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, क्या कहेंगे बहुत संक्षेप में अगर आप बताएं उर्मिलेश, ये अमेरिका चीन जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, मैडिसन गार्डन में बड़ी बड़ी सभाएं करना, लेकिन ये जो समस्याएं हैं भारतीय जो बाहर रह रहे हैं खासकर मिडिल ईस्ट ये जो इलाका है उनकी तरफ ध्यान शायद नहीं गया है अभी तक?
नहीं, देखिए कुछ चीजें जो मोदी साहब ने अपनी सरकार के दौरान जो कहीं और की, खासकर जैसे उन्होंने यमन से और तमाम जगह से लोगों को जो मंगवाया, ठीक है पहले भी सरकारें करती थी लेकिन इसको बहुत ऑर्गेनाइज वे में इसको प्रोपगेट भी किया इस सरकार ने। तो कुछ एक इनके अचीवमेंट्स हैं जो खासकर अपने काम को प्रोपगेट करना, यूपीए
करना और काम बताना भी हमने किया।
जी हाँ, यूपीए वन की प्रॉब्लम ये थी, खासकर मैं यूपीए वन का जिक्र करूंगा क्योंकि हम लोगों ने बड़े नजदीक से देखा है कि सरकार काम करती थी अगर थोड़ा बहुत तो उसको जानती नहीं थी कि कैसे लोगों तक प्रचारित किया जाए। अब जैसे ये सरकार कहती है कि हमने करप्शन में एक साल में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन हम यही पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि एक साल में करप्शन का कोई मामला सामने आया? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, मैं उनका कोई प्रशंसक नहीं हूं, आलोचक रहा हूं, लेकिन क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में पहले यूपीए वन में एक साल में, दो साल में, तीन साल में
आलोचना तो
कोई करप्शन केस आया था सामने?
आलोचना तो यूपीए टू की होती है। ज्यादा हम आपके पास आइए, ओमान मस्कट से एक और कॉलर है हमारे साथ, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं नाम बताइए और आप बताइए। 365
जी, मेरा नाम मोहम्मद सियाज है और मैं बीबीसी के माध्यम से जरा जानना चाहता हूं कि क्या आप बता सकते हैं कि अच्छे दिन का डिफिनेशन और चुनावी जुमला आम जुमले में क्या फर्क है? मैं बीबीसी के माध्यम से ये जानना चाहता हूं।
बताएं।
नहीं बिल्कुल, आपका सवाल बहुत वाजिब है क्योंकि मैं समझता हूं कि
मेरी एक लाइन की एक बात समझने में अधिक समय नहीं लूंगा आपका, कि मैं बीबीसी को सुन सुन के मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और इतना सपोर्ट किया था सोशल मीडिया पे कि आज मुझे शर्म आती है जब हमारे प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि भारतवासी पहले
नहीं देखे मैं
आपकी
बात समझ गया मैं। देखिए मुझे लगता है कि वाकई जिस तरह से मैसिव बड़ा सपोर्ट मिला था इस सरकार को, व्यापक जन समर्थन मिला था, उसमें उस व्यापक जनता के हितों में बड़े काम होने चाहिए थे, लेकिन एक साल में लोगों के बड़े हिस्से ने महसूस किया है कि ये सरकार कहीं ना कहीं कारपोरेट की तरफ झुकी हुई है। आप भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की बात देखिए, आप जो बैंकों द्वारा बड़े कारपोरेट को बड़ी रियायतों की बात देखिए, तो गरीब आदमी जो वोट इस सरकार को दिया, बड़े पैमाने पर वोट दिया, वो कहीं ना कहीं वाकई छला महसूस कर रहा है कि भाई उसके लिए वो बड़े काम नहीं हो पा रहे हैं जो बड़े कारपोरेट के लिए हो रहे हैं। और इनकी लॉजिक यह है सरकार के योजनाकारों की, जो खुलेआम वो कहते हैं और बड़े नेता नहीं कहते लेकिन योजनाकार कहते हैं कि भाई हम ट्रिकल डाउन थ्योरी में यकीन कर रहे हैं। उनका मानना है कि ऊपर के लोग खुशहाल होंगे अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कारपोरेट अगर बड़ा बनेगा तो उसकी प्रगति जो है वो नीचे तक परकुलेट करेगी, नीचे तक छन के जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि ट्रिकल डाउन थ्योरी दुनिया के अनेक देशों में, खासकर लैटिन अमेरिका में, अफ्रीकन कंट्रीज में और कई एशियन देशों में भी फेल कर चुकी है। तो आपको ग्रोथ को, अपने प्रोग्रेस को इंक्लूसिव यानी समावेशी बनाने पर जोर देना चाहिए, न कि पिटी पिटाई ट्रिकल डाउन थ्योरी पर आगे बढ़ना चाहिए।
बहुत शुक्रिया फयाज साहब, और अभी भी मैं नहीं समझ पाया हूं कि बीबीसी सुनने का और आपके वोट देने का क्या लिंक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 1811-7000 पर एक कॉलर है हमारे साथ, नाम बताइए।
सर हम सीतामढ़ी से संजय कुमार बोल रहा हूँ।
संजय कुमार जी, 365 दिन कैसे गुजरे हैं आपके? अच्छे हुए कि अच्छे दिन आ गए हैं आपके क्या?
हाँ सर, अच्छे दिन तो आ गए सर, बट यूपीए सरकार से तो बेटर है सर।
अच्छा, कि कैसे बेटर है बताइए
सर। एक्चुअली कि जो यूपीए सरकार में कुछ नहीं मिला था, अब युवा नरेंद्र मोदी जी जो यंग स्टेज के लिए थिंकिंग किए हैं और जैसे धन जन योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह वगैरह प्रोग्राम चलाया।
तो आपने ये जो योजनाएं हैं जनधन की और ये जो सोशल सिक्योरिटी की भी बात की है, उन्होंने आपने कोई फायदा उठाने की कोशिश की है?
हाँ सर, ट्राई कर रहा हूँ सर, और एवरी पीपल सर लाइक कर रहा है इस प्रोग्राम को।
जी बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर है 1811-7000 पर, नाम बताइए।
सर सुरेश कुमार बोल रहा हूँ, ग्राम पंचायत नड़ाऊ नौर तहसील जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से।
सुरेश कुमार जी क्या कहेंगे, 365 दिन कैसे गुजरे हैं?
मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, विपक्ष वाले कहते हैं 15 लाख, मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ विपक्ष वालों से कि 15 लाख घर बैठे आपको कौन देगा? आपने अपनी सरकार में घोटाले किए, विदेश में धन जमा किया,
वायदा तो मोदी जी ने किया था।
एक मिनट बात तो सुनो, मतलब मोदी जी मेहनत करके जब हम पैसे मिलेंगे सरकार हमें देगी ना। अच्छा मोदी जी ने कह दिया 15 लाख दे देंगे, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मतलब कहते हैं कि किसानों को वाजिब भाव नहीं मिलते खाद्य वस्तुएं, जैसे गेहूं है, गेहूं का मतलब सरकार ने 1450 रुपए रेट तय कर दिए, ठीक है। जब सरकार आपको 2 रुपए किलो गेहूं दे रही है तो मतलब सरकार जनता के ऊपर मतलब इतना बोझ क्यों डालेगी?
आप बताइए कितने नंबर देंगे, 10 में से कितने नंबर देंगे आप मोदी जी को?
मैं आपको बताऊं, मैं 1 में से 9 नंबर दूंगा। एक
क्या बात है,
बात का काटूंगा मैं बताऊँ आपको किस बात का
जी। बहुत जल्दी से अपनी बात पूरी रखिए।
मैं मतलब जो बयान आए थे एक दो नेताओं के, उस बात के मैं 1 नंबर काटूंगा, बाकी मैं मोदी सरकार को 9 नंबर दूंगा।
सुरेश कुमार जी 9 नंबर दे रहे हैं। एक दो कॉलर हम ले लेते हैं। आमिर प्रसाद है मधुबनी बिहार से, हमें फोन कर रहे हैं। आमिर जी अगर आपको आवाज आ रही हो। हेलो
जी सर, नमस्कार सर।
नमस्कार, 365 दिन कैसे गुजरे हैं, क्या कैसा गुजरा एक साल आपका?
हम लोग मध्यम वर्गीय किसान वर्गीय घर के हैं, और जो परिस्थिति गुजरी है, हमारे एक दोस्त मैं सुन रहा था जनधन योजना पर भी चर्चा किया, और जनधन योजना की जो असलियत है सर कि गरीब घर के लोग जीरो बैलेंस पर तो खाता खुला लिए, और जब मैं बैंक पहुंचा, क्योंकि बैंक से मेरी लगाव है ग्रामीण बैंक से, और जब मैं बैंक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि अगर 45 दिन के अंदर में एटीएम या रुपए कार्ड से अगर आप इसमें से पैसे नहीं निकालते हैं तो ये लाभ आपको नहीं मिलेगा। जैसे एक बीमा आया है सर 12 रुपए का, वो तो ठीक ठाक लग रहा है, और एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा आया है जो 360 रुपए का है। गरीब घर के लोग 360 रुपए प्रति साल जमा करेंगे, और उन्हें एक्सीडेंट होने पर, मौत होने पर ही उनके संबंधी को इस बीमा का लाभ मिलेगा, उसे रिफंड नहीं होगा। तो ये सब जो परिस्थिति आ रहा है मध्यम वर्ग के लिए, वो एक साल के दरमियान में बहुत संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना भी मोदी जी से हम लोगों को
बहुत शुक्रिया। आमिर जी बिल्कुल, आपने अपनी बहुत ही खूबसूरत बात रखी है आपने तरीके से। उर्मिलेश जी, ये जो योजनाएं आई हैं, क्या आपको लगता है कि इनका ऑनेस्ट क्रिटिक हुआ है? क्रिटिक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन जो एक होता है क्रिटिसिज्म, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, क्या उसको एक हुआ है कि इसको देखा तो जाए कि जमीन पर ये योजनाएं कैसे काम कर रही हैं, कि जो है बिल्कुल जबरदस्त है?
नहीं जी, बिल्कुल आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया। हमारे देश की समस्या ये हो गई है कि जो कुछ सरकार नीतियां तय कर रही है, आमतौर पर मीडिया के बड़े हिस्से में उनके बारे में ईमानदार पड़ताल नहीं हो रही है, जयगान हो रहा है। तो जब मीडिया का बड़ा हिस्सा जयगान में लग जाएगा, सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, तो जनता का जयगान नहीं होगा, केवल सरकारों का जयगान होगा। अभी जितनी योजनाएं आई हैं, मैं आपको बताऊं, इनमें ज्यादातर योजनाएं मैं विश्लेषण करके बता सकता था अगर आपके पास वक्त होता, जो नहीं है,
बहुत संक्षेप में
कि इन योजनाओं से जो रिफॉर्म्स की बात की जा रही है या वेलफेयर करने की बात की जा रही है, कल्याण की बात की जा रही है, वो बेसिक स्ट्रक्चर इनके लिए नहीं है। आप इनके कई लिफाफे आपने बना दिए, लेकिन लिफाफों में कुछ नहीं रहेगा। तो होगा कि आप जैसे अभी एक नई योजना आ रही है, वो यह है कि सीनियर सिटीजन के लिए स्वास्थ्य गारंटी की। सवाल यह है कि पूरे देश के ग्रामीण अंचल में, कस्बों में, छोटे मझोले शहरों में, यहां तक कि बड़े शहरों में, अगर पब्लिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पताल नहीं है, या अगर हैं तो इतनी ज्यादा भीड़ है कि आम आदमी पहुंच नहीं सकता, ऐसे में आप कैसे दिलाएंगे? क्या बड़े 5-स्टार जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनकी छूट आपने दे रखी है, क्या वो देंगे सीनियर?
शिकायतें भी हैं।
तो मुझे लगता है कि सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य दो जो बड़े क्षेत्र हैं, इसमें जिस तरह से इसकी नीतियां हैं प्रो कारपोरेट, जिस तरह इसकी नीतियां हैं सिर्फ निवेश के नाम पर कि बड़ी बड़े बड़ी पूंजी आवे, उससे आम जनता के लिए दोनों दरवाजे लगभग बंद हो गए हैं। और मुश्किलात ये पैदा हो गई है कि जिस देश में आदमी स्वस्थ नहीं होगा वो देश ग्रोथ कैसे करेगा। मुझे लगता है कि ये दो बेसिक सेक्टर इस सरकार ने सबसे अधिक इग्नोर किए हैं और बजट में कटौती की है। दिलचस्प बात यह है
जी, अगर हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार भी हैं और बस्ती से हैं। धर्मेंद्र कुमार, अगर आपको आवाज आ रही है हमारी, धर्मेंद्र जी,
जी
आप बताइए कि कितने नंबर देंगे आप मोदी सरकार को पिछले एक साल के परफॉर्मेंस के लिए?
दस में दस पूरे।
क्या बात है, दस में से दस पूरे, कहीं भी नंबर नहीं काटेंगे आप?
नहीं सर।
तो क्यों नहीं नंबर काटेंगे, कैसा ऐसा क्या कर दिया उन्होंने?
सर एक साल में कोई करप्शन, जो बड़ी करप्शन होते हैं, एक साल में एनडीए में कभी हुआ नहीं।
आप क्या करते हैं धर्मेंद्र कुमार जी वैसे?
सर मैं आईटीआई किया हूँ, फिलहाल अभी घर पे रहता हूँ।
अच्छा, तो आपको लगता है कि नौकरियां बढ़ाने के लिए काम होना चाहिए था, वो हुआ है पिछले एक साल में?
सर वो तो होगा ही, क्योंकि अभी एक ही साल हुआ है, 365 दिन का कोई मायने नहीं रखता, जबकि अभी चार साल शेष बचे हैं एनडीए के पास। तो फिलहाल जो मोदी जी कर रहे हैं वो देश हित के लिए कर रहे हैं, समाज हित के लिए कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र कुमार जी, यानी आपका अच्छा दिन अभी नहीं आया लेकिन अभी आप कह रहे हैं देश का अच्छे दिन आ गए हैं, बहुत शुक्रिया। 1811-7000 पर एक दो कॉलर्स और हैं हमारे पास। हेलो,
हेलो,
नाम बताइए।
मेरा नाम सरोजीत कुमार है, सोनभद्र से बोल रहा हूँ।
सरोजीत कुमार जी सोनभद्र से, क्या कहेंगे पिछले एक साल कैसे गुजरे हैं आपके?
एक साल में तो यही गुजरा है कि नरेंद्र मोदी ने एक काम नहीं किया, सिर्फ 10-10 लाख के सूट पहने हैं।
अच्छा,
10-10 लाख सूट पहनेंगे देश के लिए कौन काम करेगी वो?
अच्छा, तो लेकिन कुछ योजनाएं जो उन्होंने लॉन्च की हैं इस पर क्या कहेंगे आप, जो किसानों के लिए उन्होंने पैसे बढ़ाने की बात कही है, उसके बाद से सोशल सिक्योरिटी की बात कही है, इस पर क्या कहेंगे आप?
वो योजनाएं जब कागज पर जब आम आदमी को उसका लाभ मिलेगा तब तो कुछ फायदा है।
आप क्या करते हैं वैसे?
मैं यही आईटीआई का छात्र हूँ।
आप अच्छा, तो नौकरी की क्या संभावनाएं देखते हैं अपने लिए आप, पिछले एक साल में क्या संभावनाएं बढ़ी हैं?
नौकरी के लिए आवेदन करते 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 थक कर बैठ गया, लगता है कहीं घर पर बैठ कर ही सो जाऊं।
आप बताइए अगले एक साल में मोदी जी को क्या करना चाहिए जो उन्होंने एक साल में नहीं किया है पिछले?
मोदी के लिए अगले एक साल में सबसे जरूरी जो चीज है, देश को जो उसके पास वाले पाकिस्तान चीन जैसे देश है उनसे सीमा विवाद निपटाना चाहिए, पहला काम। दूसरा काम, जो बेरोजगार युवक है उनके लिए रोजगार पैदा करना चाहिए।
जी बहुत शुक्रिया आपका, ये बेरोजगारी की बात बहुत शुक्रिया। सरकार इस पर जोर देती रही है स्किल डेवलपमेंट पर, लेकिन क्या उसका असर जॉब मार्केट में उर्मिलेश जी आपने देखा है, या आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए पिछले एक साल में कुछ खास सुना है?
देखिए ये कह रहे थे कि 250 मिलियन रोजगार हम सृजित करेंगे, इसके हिसाब से 25 लाख प्रतिमाह होता है, लेकिन सरकारी आंकड़े जो अभी बता रहे हैं कि दिसंबर 14 तक हमारे देश में जो जॉब मिली लोगों को वो कुल जो सरकारी दावा है 1.70 लाख, यानी 1,70,000। अब सवाल यह है कि ये स्पीड बहुत कम है और जो वादे हैं उसके मुतल्लिक भी नहीं है। असल में हमारे यहां समस्या क्या है कि हम जॉब तब तक ज्यादा नहीं क्रिएट कर पाएंगे जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा, निर्माण क्षेत्र हमारा नहीं बढ़ेगा। निर्माण क्षेत्र केवल आप पूंजी निवेश करा दें, एफडीआई ला दें, उसी से नहीं होगा। इतना बड़ा कृषि क्षेत्र है, वहां लोग भाग के आ रहे हैं शहरों में क्योंकि उनको खेती अलाभकारी लग रही है। आप एग्रो बेस्ड इकोनॉमी जो है, जिस तरह से बहुत सारे हमारे क्षेत्र हैं कृषि क्षेत्र हैं, वहां जो उत्पाद हो रहा है उसका जिस तरह रूपांतरण या दूसरे क्षेत्रों में होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। आप केले की उपज हो रही है, आप लीची पैदा हो रहा है, आम पैदा हो रहा है, लेकिन वहां पर कोई लोकल इंडस्ट्री नहीं खड़ी हो रही है जो उन उत्पादों पर आधारित हो। तो बहुत सारा रोजगार इस तरह से बन सकता था, लेकिन उसके लिए आपके पास एक नजरिया होना चाहिए। केवल बड़े क्षेत्रों में हैवी इंडस्ट्री में एफडीआई लाने से अगर बाजार बन जाएगा और रोजगार बढ़ जाएगा तो मुझे लगता है ये भारत के बारे में गलत सोच है। भारत जैसे चाइना का उदाहरण लिया जाता है, लेकिन लोग चाइना के आज के रूप को देख रहे हैं। चाइना 20 सालों में कैसे बदला गया है ये वो नहीं देखते, हिस्टोरिसिटी ऐतिहासिकता उसकी नहीं देखते। उन्होंने एग्रेरियन इकोनॉमी को पहले कंसोलिडेट किया, पहले उन्होंने रिफॉर्म्स किए एग्रेरियन क्षेत्रों में। हमारे यहां आर्थिक सुधार तो होता है, लेकिन आर्थिक सुधार का मतलब सिर्फ कारपोरेट को सुविधा देना। हमारे यहां आर्थिक सुधार किसी क्षेत्र में नहीं होता है, ग्रामीण क्षेत्र में होता ही नहीं है, एजुकेशन में होता ही नहीं। एजुकेशन का मतलब निजी क्षेत्र के लिए सारी यूनिवर्सिटीज को दे देना, हेल्थ में सारे पंच सितारा जो अस्पताल हैं उनको अनुमति दे देना।
लेकिन जनधन योजना शुरू करना, तो ये थोड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है?
देखिए विनीत, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। इस तरह की योजनाएं जो शुरू की जा रही हैं, जितनी भी योजनाएं, मैं समझता हूं एक दर्जन योजनाओं को ले लीजिए, कुछ के तो नाम केवल बदले गए हैं, वो पहले से बरकरार हैं। इन योजनाओं का यूपीए के समय भी मैं कहता था, आज भी कह रहा हूं कि लाभ लोगों को वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ, मनरेगा जैसी योजनाओं जरूर गरीबों को लाभ मिला, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार श्रमिक।
लेकिन जो फिगर्स आते हैं सरकार की तरफ से, इतने करोड़ अकाउंट खुल गए,
ये सारे मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक जर्नलिस्ट के तौर पे और जिम्मेदारी के साथ कि इनमें 90% बोगस क्लेम है। ये सरकार ये
बहुत,
के 90% बोगस दावे हैं, खासकर इस तरह की योजनाओं के। मैं मनरेगा की बात नहीं कर रहा हूं, उसका लाभ मिला है लोगों को, लेकिन ये जो योजनाएं जैसे अभी कि आपको
7 दिन में 7 करोड़
ये मिल जाएगा, आपको अस्पताल में सुविधा मिल जाएगी, सीनियर सिटीजन को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, MRI भी हो जाएगा। अरे भाई, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर गांव क्षेत्रों में नहीं है, छोटे मझोले शहरों में अस्पताल खत्म हो रहे हैं, कैसे होगा?
एक युवा श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेलो, और नाम बताइए।
कहाँ? मेरा नाम पड़ेगा जयप्रकाश सिंह।
जयप्रकाश जी कहाँ से बोल रहे हैं?
जी मैं बक्सर बिहार से, मेरा गांव का नाम चक्की पड़ेगा।
जी जी, अपनी बात रखें जयप्रकाश जी, क्या कहेंगे, कितने नंबर देंगे आप मोदी जी को?
जी मोदी जी को मैं इसमें से 2 नंबर देना पड़ूंगा।
क्या दो? बहुत कम दे रहे हैं आप, क्यों दे, इतनी नाराजगी क्यों है?
नाराजगी है सर, युवाओं के लिए अभी तक उनका कोई भी काम नहीं किया है, क्योंकि मैं भी युवा हूँ और बेरोजगार घूम रहा हूँ, इसलिए ये अपना जो देख रहे हैं उनको अच्छे दिन मोदी जी के लिए आए हैं, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। इनका मैं विदेश नीति का सराहनीय कदम बताऊंगा सर।
विदेश नीति भी आप कह रहे हैं अच्छा काम है, लेकिन जो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है उस पर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, ये कहना है। जयप्रकाश जी का बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश जी, 1.5 मिनट बचे हैं, उर्मिलेश जी आप मुझे बताएं आप कितने नंबर देंगे और अगले एक साल का क्या टारगेट होना चाहिए नरेंद्र मोदी सरकार का?
तो विनीत, मेरी गणित बहुत खराब रही है तो मैं किसी भी नेता या सरकार की उपलब्धियों पर नंबर नहीं दे पाता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने एक वर्ष की जो सरकार है उसमें उन्होंने दावे जो किए थे उसको अचीव करने में बहुत पीछे रहे हैं, लेकिन इनका जो प्रचार तंत्र है वो बहुत बेमिसाल है और आजादी के बाद संभवतः ये पहली सरकार है जो अपने प्रचार तंत्र में इतनी व्यवस्थित, इतनी शानदार है कि मीडिया, बड़े देश के मीडिया हाउस जो हैं वो स्वयं सरकार का एक साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले सरकारें अपना उत्सव करती थी एक साल पूरे होने पर, इस बार तो मीडिया संस्थान उत्सव कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, तो बहुत सारे खर्चे के साथ। वो न्यूज रिपोर्टिंग पर खर्च नहीं कर रहे हैं, वो न्यूज गैदरिंग पर खर्च कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं ब्यूरोज अपने, लेकिन सरकारों के एक साल पूरे होने पर बेतहाशा खर्च कर रहे हैं, तो इस मामले में अचीवमेंट है। दूसरी बात, जो विदेश नीति की अभी उन्होंने कही, बहुत बढ़िया, रेपो बना रहे हैं, अच्छी बात है और ये रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन बांग्लादेश में जो सरहदी जो मामला हल हुआ उसके अलावा कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। और ये जो अचीवमेंट है बांग्लादेश के साथ, ये भी 2011 में यूपीए सरकार ने ऑलरेडी इसको कर लिया था, इसको केवल अंजाम तक पहुंचाया गया है, यानी फाइनलाइज किया गया है, दैट्स ऑल। और नेपाल के साथ या भूटान के साथ,
कश्मीर में चुनाव
देखिए, पिछला चुनाव जो हुआ था वो भी बहुत शानदार हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है
जी।
पिछले अगर कश्मीर के चुनाव
10 सेकंड में कोई नंबर अभी भी आप नहीं देंगे?
नहीं, मैं कह रहा हूं कि आशाएं लोगों को, मध्य वर्ग के एक बड़े तबके को बहुत सारी आशाएं हैं। मैं उनसे यही चाहूंगा इस सरकार से कि वो कारपोरेट की तरफ ज्यादा ना देखें, कारपोरेट को मदद दें, लेकिन आम जनता जिसने वोट दिया है
उसकी
उसको तवज्जो दिया जाना चाहिए।
शुक्रिया,
सबसे अधिक वरीयता उनको दी जानी चाहिए।
वक्त समाप्त हो चुका है और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। 65 साल की जर्मन महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। जर्मन टीवी RTL ने खबर दी है कि अनहू क्रेट राउनिक का कृत्रिम गर्भाधान हुआ था और उन्होंने बर्लिन के एक अस्पताल में एक साथ 3 बेटों और 1 बेटी को जन्म दिया। राउनिक को पहले से ही 13 बच्चे हैं और उनके 7 नाती पोते भी हैं। आयरलैंड में हुए जन्मत संग्रह के शुरुआती रुझानों से लग रहा है कि नागरिकों ने समलैंगिक शादी को कानूनी दर्जा दिए जाने के पक्ष में वोट डाला है। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक बेनतीजा रही, क्योंकि उसमें इस बात पर असहमति पैदा हो गई कि इसे मध्य पूर्व में कैसे लागू किया जाएगा। बीबीसी समाचार।
फैसल मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। उर्मिलेश जी आए आप स्टूडियो में, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शाकिर आलम जो स्टूडियो संभाल रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे विनीत खरे को दीजिए अनुमति।